मारियो पूजो के लिखे अंग्रेजी उपन्यास द गॉडफादर में एक डायलॉग है, रिवेंज इज ए डिश दैट टेस्ट बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड। मतलब बदला एक ऐसा भोजन है जो सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए। ये जुमला पूरी तरह से ऊधम सिंह पर लागू होता है, जिन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड का बदला लेने के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार किया। तब तक जलियांवाला बाग में गोली चलवाने वाले ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो चुकी थी, लेकिन ऊधम सिंह की गोलियों का शिकार बने उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर, जिन्होंने कदम कदम पर उस हत्याकांड को उचित ठहराया था। आम धारणा यह है कि जिस समय जलियांवाला बाग में कत्लेआम हो रहा था, ऊधम सिंह वहां स्वयं मौजूद थे और उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो इस ज्यादती का बदला लेंगे। लेकिन ऊधम सिंह पर बहुचर्चित किताब द पेशेंट असैसिन लिखने वाली बीबीसी की मशहूर प्रेजेंटर अनीता आनंद इससे सहमत नहीं है।
खाली ऊधम सिंह को पता है कि वो कहाँ थे उस दिन। मैंने बहुत कोशिश की ये सब्सटेंशिएट करने के लिए कि वो गार्डन में मौजूद थे कि नहीं थे, और आई कुड नॉट डेफिनेटली से कि वो थे वहाँ गार्डन में। ब्रिटिश लोगों ने बहुत कोशिश की टू सेपरेट ऊधम सिंह फ्रॉम जलियांवाला बाग, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए ऊधम सिंह और जलियांवाला बाग के बीच में। आई थिंक ही वाज इन पंजाब एट द टाइम, आई डोंट थिंक ही वाज इन द गार्डन, पर उन्होंने भेजे थे लोगों को जलियांवाला बाग, उस वक्त वो लीफलेटिंग कर रहे थे वो नेशनलिस्ट के लिए।
अब ये भी जान लिया जाए कि जलियांवाला बाग के मुख्य सूत्रधारों में से एक माइकल ओ ड्वायर कौन थे और भारत से वापस आने के बाद लंदन में क्या कर रहे थे।
तो माइकल ओड्वायर एक्चुअली बहुत अजीब आदमी थे वो, क्योंकि वो आयरिश कैथोलिक थे और उनकी पैदाइश टिपरेरी में हुई थी। टिपरेरी एक जगह है आयरलैंड में जहाँ पर लोग ने बहुत सफर किए हुए थे अंडर ब्रिटिश रूल, पर ओड्वायर के फैमिली जो थे दे वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। माइकल ओड्वायर हेटेड नेशनलिस्ट, गांधी की नेशनलिज्म थी, he hated it even before he met Gandhi. Now, काफी लोग थे जो इंडिया में उन्होंने सर्विस की and they loved India, they loved Indians, they grew to learn the language. Michael O'Dwyer उनमें से नहीं थे, he never trusted Indians. जैसे कोई botanist classify नहीं करते poisonous species को, वो Michael O'Dwyer ने Indians को ऐसे classify किया था अपनी memoirs में कि सिख लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लोग ऐसे हैं। He used to just classify them and he had very little respect for any of them. वो ये सोचते थे कि इंडियन लोगों में एक कमी है, एक racial कमी है, and that means they cannot govern themselves. उनमें है ही नहीं ये capability कि they can govern themselves. Michael O'Dwyer ये भी सोचते थे कि ये जो ब्रिटिश राज है, it must stay by any means necessary. It must stay. और अगर इंडिया चली गई ना उनके ग्रास्प से तो पूरी एम्पायर चली जाएगी।
13 मार्च 1940 का दिन जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। ऊधम सिंह ने अपने वार्डरोब से सिलेटी रंग का एक सूट निकाला। उनको उस दिन एक ऐसा शख्स दिखना था जो बहुत बोरिंग है, उस तरह का शख्स जिस पर कोई दोबारा नजर नहीं डालता। उन्होंने अपने कोट की ऊपरी जेब में अपना आइडेंटिटी कार्ड रखा जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आजाद, 8 मॉर्निंगटन टेरेस, रेजेंट पार्क। उन्होंने 8 गोलियां निकालकर अपनी पतलून की बाई जेब में डाली और फिर अपने कोट में स्मिथ एंड वर्सन मार्क II की रिवॉल्वर रखी। जब वो कैक्सटन हॉल पहुंचे तो किसी ने उनकी तलाशी लेना तो दूर, यह भी गवारा नहीं किया कि देखें कि उनके पास उस आयोजन का निमंत्रण पत्र है भी या नहीं।
ताज्जुब की बात है एक्चुअली दैट सिक्योरिटी इतनी कम थी, एंड स्पेशली जब आप सोचते हैं कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी मौजूद थे उस मीटिंग में। पर ऊधम सिंह ही प्लान्ड इट सो केयरफुली। पहले तो ही केम इन द लास्ट फ्यू मिनट्स दैट द डोर वाज ओपन, ही वाज वन ऑफ द लास्ट टू कम। ही वाज वेयरिंग हिज हैट tipped down over his face, he had a coat over his arm. Aur ye sara pata chalta hai because all of the eyewitnesses who were in the room gave statements, very detailed statements, and usko piece piece karke sticking them together you can get a very good idea of what happened that day.
Jab 2 baje Caxton Hall ke darwaze khule to minton mein hi wahan ki 130 kursiyan bhar gayi. Michael O'Dwyer ki seat hall mein bilkul aage dahini taraf thi. उधम सिंह पीछे बैठने के बजाय धीरे धीरे चौथी सीट तक पहुंच गए। वो ड्वायर से कुछ ही फिट की दूरी पर थे जो उनकी तरफ पीट करके बैठे हुए थे।
He stood by the side of the hall for the speeches to happen and लोगों ने ये याद किया कि he stood and he was smiling, totally casual, totally cool, just waiting as if he was listening very carefully. पर वो जो अजीब बात थी कि he kept smiling. Inch by inch, he kept moving closer to the front of the hall. जब आखिरी स्पीच जब खत्म हुई थी, the people started getting up and getting their bags together. और उधम सिंह जस्ट वेंट वेरी स्लोली वेरी कैजुअली टू द फ्रंट जहाँ के माइकल ओडवायर फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ही वाज टॉकिंग टू अनदर मैन लुई डेन अनदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब लॉर्ड लैमिंगटन वाज देयर ही वाज स्पीकिंग टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पूरा एक नॉट था ऑफ मैन एट द फ्रंट एंड उधम सिंह वॉक्ड अप टू हिम विद हिज हैंड आउटस्ट्रेच्ड और माइकल ओडवायर ने ये सोचते होंगे कि ओह ही इज गोइंग टू शेक माय हैंड देन ही सॉ द गन Then he turns around. Udham Singh is so close to him that the gun is almost pressing into the jacket fabric. And he shoots once. The bullet smashes straight through his ribcage and goes through his heart. The man doesn't have even time to fall before he lets off second round. He pulls the trigger again. Second bullet smashes into him, almost following a parallel trajectory, goes through his heart again. And then Michael O'Dwyer collapses onto the floor. And he is dying. You know, there's no hope for him. And then Udham Singh turns his gun onto others in the hall, the Secretary of State, another former Lieutenant Governor of Punjab, a former Governor of Bombay. But his gun is malfunctioning. Bullets jo unhone gun mein dali thi, wo bahut chote the for the compartments of the gun. Aur isliye the bullets did not fire with their full force.
Jab Udham Singh ne firing band ki, unki revolver ki naal garm ho chuki thi. वो रास्ता छोड़ो चिल्लाते हुए हॉल के बाहरी दरवाजे की तरफ भागे।
After he shoots Michael O'Dwyer, he tries to run to the back of the hall. उन्होंने बहुत कोशिश की to get out, but एक औरत बैठी हुई थी just on the side of the audience. उसका नाम था Bertha Herring. काफी बड़ी उम्र में और साइज में काफी हेल्थी थी वो. And she stands up, और उसने पूरे फोर्स से, she stood up and threw herself at him, and threw him into the wall. He fell down. And after she did that, Bertha Herring, four or five men jumped from the crowd, and they'd fall on Udham to keep him on the ground. And when the police come, he's sitting in a chair, and he's smiling. Detective Inspector comes and asks him, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आजाद.
आधे घंटे के अंदर करीब 150 पुलिस वालों ने कैक्सटन हॉल को घेर लिया और वहीं उधम सिंह से सवाल जवाब होने लगे। वहां क्या कुछ हुआ उसका विवरण ब्रिटेन के द नेशनल आर्काइव्स में अभी तक मौजूद है।
जब सर्जेंट जॉन्स के बॉस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डेटन ने कमरे में घुसकर चार इस्तेमाल किए गए कारतूसों को मेज पर रखा तो उधम सिंह का संयम उस शाम पहली बार टूटा। उन्होंने नाराज होकर कहा, नहीं नहीं, मैंने चार नहीं छह गोलियां चलाई थी। डेटन उन गोलियों की तलाश में दोबारा ट्यूडर रूम में गए। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि एक गोली माइकल ओडवायर के शरीर के अंदर अभी भी धसी हुई है और दूसरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड जेटलैंड के सीने में धसी हुई है। फिर उधम सिंह ने पूछा कि जेटलैंड मरे कि नहीं, मैंने दो गोलियां तो उनके अंदर भी डाली हैं।
जेल में उधम सिंह के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। वो वहां कई बार भूख हड़ताल पर बैठे इस बात के प्रमाण है कि उन्हें 42 बार फोर्स फीड यानी जबरदस्ती खाना खिलाया गया।
उधम ने पेंसिल और कागज की मांग की ताकि वो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जॉन स्वेन के अफसरों को एक औपचारिक पत्र लिख सकें। उन्होंने इस पत्र में कुछ चीजों की फरमाइश की, जैसे कि मुझे मेरी सिगरेटें भिजवाई जाएं और मेरी एक लंबी आस्तीन की कमीज और भारतीय स्टाइल के जूते भी मुझ तक पहुंचा दिए जाएं। उधम ने यह भी पूछा कि क्या उनके फ्लैट से उनकी सूती पतलून और पगड़ी मंगाई जा सकती है ताकि वो उन्हें जेल में पहन सकें। हैट यानी टोपी मुझे माफिक नहीं लगती क्योंकि मैं भारतीय हूँ। उनकी कोशिश थी कि वो इन चीजों को पहनकर केस को राजनीतिक रंग दे सकें।
मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने ब्रिटिश सरकार की साख गिराने का कोई मौका नहीं चूका। अल्फ्रेड ड्रेपर अपनी किताब अमृतसर द मैसेकर दैट एंडेड द ब्रिटिश राज में लिखते हैं,
जज ने उन्हें आगाह किया कि वो बस ये बताएं कि उन्हें फांसी की सजा क्यों न दी जाए। उधम सिंह ने चिल्लाकर कहा, मौत की सजा की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूं। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उससे शिकायत थी, वो इसका हकदार था, वो मेरे लोगों के हौसले को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने ही उसे कुचल दिया। मैंने बदला लेने के लिए पूरे 21 साल का इंतजार किया। मैं खुश हूं कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं।
31 जुलाई 1940 को जर्मन विमानों की बमबारी के बीच सुबह 9 बजे उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब उनके ताबूत पर मिट्टी का आखिरी फावड़ा डाला गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने इसके साथ ही उनकी कहानी भी हमेशा के लिए दफन कर दी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 19 जुलाई 1974 को उनके पार्थिव शरीर को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर भारत लाया गया।
इंदिरा गांधी पर प्रेशर पड़ रहा था कि ब्रिंग आवर बॉय होम, पंजाब से ज्यादातर। उधम सिंह को उन्होंने बैरी किया था एक अननेम्ड अनआइडेंटिफाइड प्लॉट में, खाली कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे एक पीस ऑफ पेपर गवर्नर के ड्रॉ में, और ही वाज जस्ट नेक्स्ट टू मर्डरर्स एंड अ मैन हु हैड बीन हैंग्ड फॉर ट्रीजन, एंड नो हेडस्टोन, नो मार्किंग, नो नेम, नथिंग। 74 में इंदिरा गांधी ने कहा ब्रिटिश को कि आई वांट हिम बैक, और सम मिरेकल से, पता नहीं कैसे ये हुआ है, बिकॉज इट वाज सच अ सेंसिटिव टाइम, the British finally agreed to do it, and Udham Singh's body was dug up from Pentonville prison and it was flown back to India, and it was received as if it was some visiting president from another country. It was taken to Kapoor Tala House in Delhi, the remains, and Indira Gandhi had decided ki ye jo unki jo remains thi, they would tour Punjab for a few weeks taki everybody would have a chance to see him and say goodbye to him. और जहाँ वो कॉटेज, जो फ्यूनरल कॉटेज, जहाँ भी जाती थी वो, पीपल वुड कम ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड दे वुड क्राई एंड दे वुड थ्रो फ्लावर्स एंड दे वुड वांट टू से गुडबाय इन द मोस्ट इमोशनल वे, एंड उधम सिंह विद ग्रेट सैडनेस इज ही नेवर सॉ दैट, हाउ मच लव हिज पीपल हैड फॉर हिम।
रेज़े अलमास के तेरे खसो खाशाक मेरे हड्डियां अपने बुजुर्ग तेरी खाक में है, तुझसे मुँह मोड़ के मुँह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छावनी छाएंगे कहाँ।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।